Hello.
हेलो,
हाय सबाहत.
हाय शनाना, हाउ आर यू?
बिल्कुल ठीक. हाउ यू? थैंक
बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र।
यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी. आई रियली अप्रिशिएट इट. आई एम अ फैन. आई हैव बीन सिंस यू स्टार्टेड पोस्टिंग योर वीडियोस.
थैंक
फॉर
यू वेरी
दोज
मच।
लिसनिंग, सबाहत जकरिया इज द राइटर एंड कल्चरल क्रिटिक फॉर्मली नोन एज द फेमिनोस्तानी. आई से फॉर्मली सबाहत बिकॉज एज ऑफ दिस मॉर्निंग योर यूट्यूब चैनल वॉज कॉल्ड द उस्तानी. And you've split your content into the Feministani and the Tariqustani now. So thank you very much for forcing me to ditch 99% of my research at the last minute.
Yeah, that's just something that I've been thinking about a lot because each time I tell somebody who doesn't know about Feministani at all that this is what my channel is called, they sort of assume that it is about feminist content, which it was about for a considerable period of time, but since it has branched out into so much more now, I feel perhaps a name change is warranted just for the confusion to be a little less.
I think that makes abundant sense, and I would agree with that. Your content is not just feminist content, and I think some of your most valuable early work for me anyway was about a cultural history of Pakistan, for example. Do you think that your decision to rebrand was in any way impacted by how people react to women speaking about things like history or politics?
I wouldn't say the rebranding is necessarily about that, but most definitely people do react a certain way to women talking about history and politics or anything that is generally not deemed women's domain. In this particular case, I would say it was honestly more about the fact that perhaps I felt it did not reflect the channel's diversity, but that was really the reason behind the rebrand. But about people not expecting it from women, oh, absolutely. And the kind of responses I generally get and all of that, that's something. Yeah, that's another topic.
And it's very frustrating because it's almost as if when we are speaking about politics or history, a lot of people in Pakistan just either can't hear us, as if they don't operate on that frequency, or I don't know if they can't hear us or if it's deliberate kind of misogyny. I'm torn.
Okay, but my question is that, are there that many women in this space to begin with? And I've also questioned that fact because, I look at Instagram and I do see where women generally tend to be, and I understand the systemic, let's say, reasons and all of that, but I also kind of, question the women's participation in it to begin with. I find myself in a lonely space, to be honest. So yeah, I mean, yes, there are obviously the responses from the other party, but then my question is, what are we doing, or are we doing enough to push back?
Most recently, using the Feministani platform, you've been mining Pakistani popular culture for what you call feminist and social critique. But your engagement with Pakistani culture and identity formation significantly predates that. So before you left Pakistan about 5 years ago, you were a journalist and editor with experience across media forms, and you had similar thematic preoccupations, right?
True.
But traditional media, mein toh khair, there are certain styles and tones one must conform to. But now that you are your own boss, you've established a very distinctive one of your own, one that is very well described by your term midbrow. Can you tell me what midbrow means?
Right. Yes, I think midbrow is something I'm particularly invested in, and I really, really care about because, as you pointed out, my earlier iterations have been about print media, about writing in the English press in Pakistan, etc. Because of which, I have come across a lot of people who operate in that domain, people who write in English in Pakistan or outside of it, but like, related to Pakistan. And I also came across a lot of people who were interested in literary writing. And a lot of them, unfortunately, also seemed to me like terrible bores and extremely arrogant at times and things like that. So it's general observation that I may have noticed amongst academics, let's say, or academics who write. And I always did not feel comfortable in that sort of not just environment, but also when I read some Pakistani authors who consider themselves to be possibly highbrow, I'm just bored by it. And so there was that, perhaps, that I've always thought about. And then there's obviously, whatever we call the lowbrow, which would perhaps be maybe, something that is not just slapstick, but also even beyond that. I mean, something that is off color, let's say. Again, I mean, all of these definitions are very much also tied in with class or whatever. So, I mean, I'm a little reluctant to just generalize, but whatever is perceived that way. So, I would say that for me, mid-brow is something that is mainstreamish, that people will be able to grasp immediately, at least, if not immediately, then at least, fairly. And but something that can be entertaining, but can also be deep. Well, let's say that. So, I mean, that's my own understanding of midbrow. I don't know if this definition is even much in use anywhere. It's just something I feel like almost like I have invented in my head. But yeah, for me, to be able to get out of that space where there is some sort of snobbery attached to the imparting of knowledge or creativity or art. But in fact, I feel like being popular is great. Being able to reach out to a large number of people is great. So yeah, so for me, midbrow kind of defines that space where you can actually talk to people who may not necessarily be in your sphere, but who may have curiosity or inclinations that perhaps, have not been cultivated because, some certain people thought that there needs to be some kind of ivory tower, or this needs to be some kind of special space for the intellectual kinds.
Would you say that your recent short, Indians from Pakistan, is a good example of the midbrow category?
Oh, I hope so. Yes, I hope everything I do is. But yes, absolutely. For instance, I feel like this idea of somehow being able to explain or bring home to people the reality of life in a subcontinent that was not what it is today, to try to drive home the fact that in my city, Lahore, Hindus were as much a part of cultural life as, any other religion or ethnicity or whatever. I mean, how diverse things were within the areas that are now Pakistan, and how much of that diversity has been lost. I think that talking about Bollywood stars or politicians or cricketers, I mean, these are people that we immediately relate with, or at least know. I think celebrities or famous people, yeah, they are entertainment, as we call it. I mean, it's a great way of being able to explain something that is not necessarily about entertainment. That to me is like one of the things most definitely that feminist learning has always done, which is to, like, take things that are popular, which is sort of like, entertainment, etc., and from there go into areas like history, to make a point that perhaps purely academic history might not, I mean, would make, but would make in a less accessible way.
That's why your first post says Tarikistani. Tarikistani or
Tarikhustani.
Tarikustani?
Yes.
Tarikustani. Tarikustani also
Yes.
focuses on India and Pakistan. Acha, so since you are clearly very interested in identity formation and identity flux, let
Right.
me ask you, what do you think is the difference between a Pakistani and an overseas Pakistani?
Right. So it's very, very strange to me that, I mean, I should even be asked this question, considering how long I have not been an overseas Pakistani, how long I've actually actively sort of defined myself in opposition to overseas Pakistanis, I would say. Or even, a category I talk about frequently on my Twitter and get a lot of hate for, from what I would call my own kind, which is like burgers. Because I kind of tend to define myself against people who are, in actuality, perhaps the people I do come from or belong to in so many ways. I feel like overseas Pakistan is that is another of one of those categories now that I am one. I think that, you know, if I think from my Pakistani brain, the person who's lived in Pakistan all her life, I feel like there's not much that you can really carry over, obviously beyond a generation. So if you are an overseas Pakistani, you're cut off from reality, I would say, or even any real way in which you can impact that geography. Like, being cut off from geography is a big deal. So it's a very strange place to be in, being this overseas Pakistani who is now, if you're a creative, obviously you're talking to it now, and like, how are you going to talk to them? And that, obviously, in my case, I continue to talk to Pakistan in the same way I was while I was doing Femnistan in Pakistan. I mean, I was there in Pakistan for like 4 years of Femnistani. So, but for that, it means that I have to consider my work on Femnistani as something that does not get me money. That's not a career in terms of finances, whatever, because I'm continuing to talk to Pakistan alone, because that's what I want to do. I'm t continuing to talk in Urdu only. I'm continuing to talk about topics that don't have overseas resonance. I do not show my overseas life. I mean, I do have a platform, maybe I could, but I don't talk about that. So I don't know. I feel like it's just such a losing game. Like, either you stay there if you are going to actually want to change things there, but you know, you can't, because if you do, then you know, you feel you are, like, even your life could be in danger. But then, you know, when you're here, you are in a way inauthentic. So I am now kind of stuck in that world, in that zone. But that's, I guess, not something very new to me. I mean, this sense of not belonging anywhere, which is like that cliche that obviously all overseas Pakistanis talk about. But I'm not talking about purely in terms of geography. I don't belong anywhere, like, I feel, in any shape or form. So, yeah.
I completely hear you. I'm in a similar situation. And the thing is that I haven't been gone long enough to forget what it was like to see an overseas Pakistani, right?
Exactly.
So it's an interesting tension to exist with. Or phir uske upar ek aur bhi tension hai, and that is, what is the difference between an overseas Pakistani and a diasporic Pakistani? इस सवाल का जवाब दें आप जरा.
अभी तो मेरे ख्याल आपने भी मुझे बताया था, और मेरे केस में भी यही है कि क्योंकि अभी ग्रीन पासपोर्ट है, तो अभी तो ओवरसीज वाला ही है, काम आसान है. अभी वो कनेक्शन भी प्रूव करना, मुझे कोई कुछ, यू नो, समबडी से समथिंग टू मी ऑन ट्विटर, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद, आई मीन, एट लीस्ट आई हैव दैट नॉलेज विद इन मी दैट आई एम टेक्निकली स्टिल अ पाकिस्तानी सिटीजन. But once that also goes away, you know, does your relationship or your ability to talk about it become even more tenuous? I don't know.
Wow. So that was not the answer I was expecting, and that's not something I've actually even ever thought of. The fact that one still has a green passport makes you overseas versus diasporic, because I thought it was about class.
Okay.
I thought कि वो पॉश वाले लोग डायस्पोरिक कहते हैं और नॉर्मल लोग ओवरसीज कहते हैं.
That's a good one. Because you
बट
see, जो
हाँ
यूके यूएस में है, वो तो वैसे भी देर ऑन अ पाथ ऑफ, यू नो, सिटीजनशिप. मगर जो यूएई में है, सऊदी अरब में है, वो एक अलग किस्म की ओवरसीज पाकिस्तानियत है कि यू नो, यू नॉट गोइंग टू गेट, इन मोस्ट केसेस यू नॉट गोइंग टू गेट सिटीजनशिप ऑफ दोज प्लेसेस, एंड यू आर गोइंग टू गो बैक टू पाकिस्तान. सो यू नो, बट दोज आर नॉट यूजली द पीपल who seem to be in the creative space either. Some of them are, but yeah, so I think, you know, there are those things, like, because definitions are created by people who are going to write or talk or, you know, create something, I guess.
People who work with language end up having a disproportionate amount of attention paid to their opinions. And they actually, you know, that's not necessarily a good thing. But I was actually hoping that you would say class in answer to that question. But thank you for making me think that. So I wanted to talk to you about class because of your take on the recent drama serial Kabhi Main Kabhi Tum, whose lead Hania Amir recently poked an entirely different bear, and which is where your Indians from Pakistan short came from. But in your critique of Kabhi Main Kabhi Tum, you talked about how relationship building is always middle class to elite relationship building, never middle class to uneducated gharib relationship building. This made me wonder, how high exactly are your expectations of a drama serial?
Very high. I don't
हाँ,
see
लग रहा
any
है.
reason. Yeah, I don't see any reason why these Pakistani dramas cannot be good. Like, I am from a time, I guess it really is about age. I am from a time when I did not see Pakistan or production from Pakistan to be naturally inferior to anything anywhere else. And I just cannot understand this acceptance of the fact that, Pakistani drama can only be this. And that can't be more. And obviously, I don't watch a lot of it at all. And I don't watch it, not a lot. I don't watch it at all, except for when something gets really big and somebody keeps telling me, please watch it. And, then I think, like, just for the zeitgeist, because I do have this whole kira of wanting to know everything about Pakistan. So there's that, like, sort of contradiction that's always at work, because Pakistan seems to be obsessed with Pakistani drama. So I'm like, okay, I should watch at least a few every year just to be able to hate on them, right? At least so that I at least I know I, if I am hating on them, I'm not hating on them, because based on ignorance, I actually know what I'm talking about. So in this particular case, I do have high expectations, absolutely. I don't see why, when these channels are so profitable now that they cannot possibly create things that are actually decent. I mean, they have, again, India is a great example. You have so much, I mean, at a larger level. I'm not saying India produces great things every day, but at least, let's say over a decade or so, you can come up with 15 things or 20 or 50 even perhaps that are actually good. Then what is wrong with us, and why can't we? And I somehow cannot digest or accept the fact that we can't. Although, there's another part of me that says, oh, these are the reasons why we can't and why India can. But I still find it, my maybe my mind understands, but my heart is having a hard time catching up with it. But I also feel like it is still possible. Why is it not happening? I don't know.
Do
I
you think it
really,
used to
really feel
happen?
that.
When
I think
you
it
say
used
you
to
have a high
happen.
bar, can you give me examples of what you think set the bar
So
for
I would
you?
say that, sure. So I would say that growing up, okay, so for me at least, I think the best example of perhaps mid-brow in the 80s is Haseena Moin. And I think those Haseena Moin dramas are definitely something that, are watchable till date. And because of, me having seen them as a child, then having read stuff like Ishtiaq Ahmed, who was a novelist in Urdu when we were kids, who turned into a rabid Islamist at some point, yes. But, prior to that, or even after he did, he knew how to write a story that could grip you. So as children, we were reading these novels, and he was producing them at sort of lightning speed. He was writing like four novels a month, and at one
Wow.
point, yes.
Excuse me, I
And
have to go live an
yeah.
entirely different life now. I'll be back in about 150
I
years
know.
as
So
an
it was
aunt.
just like, yeah, right. So yeah, I mean, I would say the fact that he could actually write something that made you want to keep reading from page 1 to 100, whatever, without stopping, but it was purely being created from within. It felt like very organically, Pakistani or whatever it may be at that point in time. Again, notwithstanding what he turned into. But yeah, so I would say that. I would say even other things that we saw on PTV, which at that point in time, the initial, again, so maybe it's quite possible that all of this for me is tinged with nostalgia of a time when I was young, and therefore, everything is good when you were young. But I do think that objectively too, even when I revisit some of these things may not pass, some of them may not pass muster today, but some of them do. And when they do, I feel like, okay, did my child grow up with any of this in Pakistan? And he didn't. So I feel like there's a lot of loss of good organic creativity. Everybody just like, somebody who can today express themselves seems to be only able to express themselves, let's say in a sort of deeper way, seems to gravitate to English. And I'm talking about, mainstream again, more, mainstream TV or writing that everyday children were able to access, which were about Pakistan in a language that, for better or for worse, is a Pakistani language or the Pakistani language. And, it felt homegrown. But when I read stuff written in English, obviously I like many of those things too, and I don't consider them invalid or not Pakistani or anything. But I do feel that they need to be augmented with a lot of stuff that is being created in local languages. They cannot be the only thing that a Pakistani, a young Pakistani can turn to for Pakistani literature or Pakistani representation.
तो ये आपने इतनी
So
सारी बातें छेड़ दी हैं एकदम, तो आई डोंट नो कि मैं
Never
कहाँ से
mind.
शुरू
It goes
करूँ।
all over.
हाँ, हालांकि आपको जवाब देने, लेकिन इस वक्त मेरा मूड हो रहा है कि मैं जरा आपको
बिल्कुल.
बताऊँ। हाँ
ये मैंने आपके तार बहुत ज्यादा छेड़
सो
दिए.
लेट मी स्टार्ट एट द बिगिनिंग बिफोर वी कंटिन्यू, बिकॉज़ आई रियली वांट यू टू कंटिन्यू व्हाट यू वर सेइंग, बट आई थिंक बिफोर वी गेट देयर वी शुड, बिकॉज एवरीबडीज ब्रेन डज नॉट वर्क एज फास्ट एज योर्स, तो लेट्स गिव देम सम ब्रीथिंग रूम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट यू सेड अबाउट nostalgia, because I had a chat with a friend who is a stalwart of the Pakistani TV and film industry yesterday, knowing that I was speaking to you, and I was asking them about and I'm going to let this source remain anonymous. I was asking them about the state of Pakistani dramas, and I also gave them the example of Haseena Moin, because मैं आपसे सिर्फ 3 साल बड़ी हूँ, by the way.
ठीक है.
हाँ, तो मैंने भी उनको हसीना मोइन का एग्जाम्पल दिया, और दे सेड दैट यू आर मिस्टेकिंग नॉस्टैल्जिया फॉर क्वालिटी, एंड अंतही एंड तन्हाइयां वर नेवर दैट गुड, खुदा की मस्ती एंड तीसरा किनारा, यस, विच बाय द वे वर ऑल्सो अडेप्टेशंस ऑफ बुक्स, खुदा की मस्ती बाय शौकत सिद्दीकी एंड द फाउंटेन हेड बाय एन रैंड. तो आई थिंक राहत काजमी साहब ने खुद ही आई थिंक अडेप्ट किया था, राइट?
जी बिल्कुल.
हाँ, तो या सो क्लियरली देर इज अ हिस्ट्री ऑफ अडेप्टेशंस ऑफ बुक्स, फॉर एग्जाम्पल, राइट? दिस द ड्रामा दैट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वॉज ऑल्सो बाय फरहत इश्तियाक, and some of the biggest hits in recent Pakistani TV have been based on the work of Farhad Ishtiaq, Hamsafar, I think, Bin Roy as well, और भी आई थिंक
आगे जो
और भी
कभी मैं
एक दो
कभी
राइट
कहूँ.
हाँ एक दो और भी राइटर्स हैं खवातीन who are very popular.
उमेर अहमद,
Is it that so nothing has changed except for our reaction to Pakistani dramas?
no, I don't agree with that at all. Not at all. I mean, there's no similarity between Haseena Moin and Umair Ahmad or Farhat Ishtiaq. None whatsoever. That means you do not un fundamentally misunderstand all of them.
No, but is it not simply an accurate reflection of contemporary society? Because this is what people are reading and this is what people are responding to. So is it possible that we are out of step with contemporary
No.
Pakistani society in our
No.
or
I think that we or I don't when I say we, I certainly don't mean myself or you. I mean Pakistan as a whole,
Because these dramas are super popular. That's why they're getting the advertising.
Sure, they are super popular, but then these dramas and what they talk about, and the worldview and just world building, this was all present in the 1980s. Again, because I can only speak for the 1980s and beyond, so I'm sure they were also existing prior to that. But for sure, they are just basically digests, women's digests come to life and come to
Yeah.
TV,
And
and
digests
that's
have massive readerships, much
yeah,
bigger than English
exactly. So
language,
they
Urdu
always
language, and
had
everything
massive
put together.
readership. Yeah, exactly. They always had massive readership, but television did not focus on, only digest kind of writing. Fatima Suraiya Bhajia was emblematic to me of that digest kind of writing on PTV, but Hasina Muin was not. Hasina Muin was actually more, clearly more influenced by Western writing, right? She is somebody who is bringing the sensibility of Jane Austen and stuff to this kind of Urdu writing. And so she has influences from both directions, and she's bringing them together beautifully. But Fatma Suraiya Bhajia is a maybe older woman or whatever it may be. Everybody has different leanings or ways of being a writer or whatever. So I would say the strand we're watching today is a continuation of the Bhajia strand or the Women's Digest strand, and that has just taken over everything. Because yeah, I mean, it is kind of, and I will say it because unfortunately, I mean, I have that issue. I feel like it's important to say these things. I would say that they are catering to the lowest common denominator, and it is always going to be easier to capture and also bring people down to that. For me, an example of this is that my mother, who is a very interesting figure in the sense that she's always been very interested in art and culture and things like that. I have seen in front of my eyes, I have seen her taste deteriorate. And it's all thanks to Pakistani drama. And so if it can happen to her, it's clearly happened to larger society as well. Like these same people were watching PTV. PTV was also very popular, and all of the tales about traffic stopping when Varis aired, or any of the big dramas aired or whatever. So obviously people cared about that stuff, which was different, which was not this way, which was not necessarily aimed at the lowest common denominator. There wasn't Kasauti a popular show? Wasn't let's say even now, although at that time it was considered to be sort of let's say maybe mid-brow or low-brow ish, Tariq Aziz, the Nilamgar, the Tariq Aziz show, whatever. I mean, those things were also popular, but they at least attempted to incorporate some cerebral aspects of Pakistaniness into mainstream culture. But these people have just gone ahead and run and sort of ran away with all of this, and now we claim that this is all that people want. But we haven't created anything alternate on a larger scale. And I understand maybe it's going to be less popular comparatively, but there are, again, examples on social media. For me, the biggest example of which is Faisal Vadaic. I don't know if you're familiar with his work. If somebody can, of like Faisal Vadaic, can get millions of views and subscribers, then why can't Hum TV, invest in something like a countrywide quiz show, or even forget fiction for a second, anything else that was part of our mainstream heritage via PTV? Why is all of it dead? I mean,
Yeah, no, I listen,
it's a
I
lack of
hear you.
imagination.
Yeah, and I agree with you, but I think that, again, listening to you, I am struck by what I think is quite common in Pakistanis, which is that we have a very fluid, the lines between a state identity building project, and our own desires are actually very fluid, right? So we're almost a bit that whole concept of enlightened moderation and propaganda isn't always bad, because it seems to me, one could argue that that is what you're saying. Okay, हमने अपनी आइडेंटिटी शुरू से बनानी है, बिकॉज हमें अब कोई और घास नहीं डालता, तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस आवर
आई
सेल्व्स
नो व्हाट यू आर सेइंग।
या
नहीं यार, नेशन तो नेशन स्टेट आइडेंटिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट तो है ही ना, और पाकिस्तान तो पर्टिकुलरली अब उसका कुछ करें। जब आप बना ही उसको स्क्रैच से रहे हैं, तो बहरहाल वो तो यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज लाइक व्हाट एल्स इज इट इन द सेंस दैट इवन इन दिस कोई ना कोई डायरेक्शन तो कोई जो भी बड़ा कह लें प्लेटफॉर्म है वो आपको अब इस वक्त तो खैर दुनिया जो है वो इतनी तितर बितर है देयर इज नो वन प्लेटफॉर्म एनी लॉन्गर। आई मीन पीटीवी कुड हैव बीन दैट नेशन बिल्डिंग और वाज दैट नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत एग्जैक्ट जगह जहां पे वो पॉसिबल था, लेकिन अब तो इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज स्केल वे। इवन इफ लेट्स से पाकिस्तानी ड्रामाज आर सो पॉपुलर, बट डोंट यू नो लाइक दैट हमारी पॉपुलेशन क्या है, और उस हिसाब से अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास की व्यूअरशिप देखें तो क्या है, कुछ भी नहीं है आप फिर भी तो वो सो आई मीन वी डोंट नो कि वो एक्चुअली में उसकी पेनिट्रेशन, मैं हजारों लोग ऐसे भी जानती हूँ जो कि ये मेरे से एग्री करते हैं कि बहुत बकवास है। सो द पॉइंट इज दैट आई मीन आई ऑल्सो नो अ बिट मोर इन टर्म्स ऑफ वट यू मीन वेन यू से दैट, बिकॉज आई फील कि कहीं से तो कोई ना कोई डायरेक्शन आई डोंट हैव अ वेरी कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ लेट्स से एनार्किस्ट अप्रोच टू दिस। आई डू फील दैट या देर आर पीपल हु फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट और गाइड और लीड पीपल इन टू थिंकिंग इन सर्टन वेज, एंड दैट्स फाइन एंड देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई डू नॉट have that sort of leftist understanding of the world, let's say maybe if it is indeed leftist, where you feel almost guilty about shaping minds. I don't think there's anything wrong with shaping minds.
No, there's nothing wrong with shaping minds, but there's absolutely nothing wrong with shaping minds. And I'm going to share something with you about one of my favorite possessions in a second related to that. But before we move on to that, my source in the industry also said something else to me, which I thought I would is worth thinking about. They said that, did you know that streaming services now tell writers and directors to include more exposition, because the way in which people watch series and serials has changed. So there and there's no longer room for your silent visual, which often is the bits which convey nuance, etc. Because so the medium has shaped the message. They said you got to keep that in mind when you're talking about why there's such a rush towards mediocrity, in terms of drama creation from a screenwriting perspective.
बिल्कुल ठीक। वो तो जाहिर है कि वो इंडस्ट्री में है, वो फील्ड में है, ही और शी और दे कैन टॉक अबाउट थिंग्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट अ प्रैक्टिकल पर्सन व्हाट्सो एवर। आई वुडन्ट बी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इफ आई वर। आई एम एन अटर आइडियलिस्ट एंड आई फील के अगर उस तरह से देखा जाए तो फेमिनिस्तानी Itself, yeah, it has views, but it doesn't have like some like crazy number of views or anything. So, I mean, I can also question क्या अगर मैं ये यू 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 करना शुरू कर दूं तो मैं बढ़ा सकती हूँ अपने व्यूज, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट डू यू वॉन्ट टू डू इट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी और डेप्थ? सो नो एंड देयरफॉर नो, तो फिर ठीक है, फिर जितने हैं उतने ही काफी हैं। सो आप सवाल तो ये ना कि आपने सिर्फ बेचनी है चीज या आपने कुछ अच्छा बनाना है। तो हाँ ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज दैट क्वेश्चन कि फिर पैसे कैसे बनाने हैं वगैरह। तो मेरा उसका जवाब ये कि नहीं, आप आई विल डू अ पार्ट टाइम जॉब समवेयर, आई वुड रादर स्टैंड एट अ डंकिन डोनट्स देन सेल माय सोल। दैट ऑब्वियसली इज अ रिडिकुलस सॉर्ट ऑफ आंसर फॉर मोस्ट पीपल। दे वोंट डू इट, उनकी कुछ मेरी कुछ लेवल ऑफ प्रिविलेजेस की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि किसी और की शायद ना हो, और जिनकी होती भी है उनकी ये सोच नहीं होती। So I understand, but like some five idealists in the world have to behave in an idealistic way at least. एंड आई
या
फील लाइक
बिल्कुल
क्रिएटिव अगर आप हैं अपने आप को कहते तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लोग ये देखना चाहते हैं आप वो एक्सपोजिशन के बगैर भी वो भी लोग हैं देयर्स दैट गाय वो क्या उसका नाम है यार व्हाट एन अमेजिंग इंडियन डायरेक्टर
कौन
चेतन्या तम्हाने ही हैज मेड दिस टू फिल्म्स द डिसाइपल एंड कोर्ट क्या
अच्छा
मतलब कमाल यानी कि ही डजंट गिव एन एफ के कोई जो है वो देखना चाहता नहीं देख लेकिन खूबसूरत बना ये नहीं है कि मैं कहूँ कि यार सिर्फ सिर्फ कूलनेस मारने की कोशिश कर रहा है और तो कुछ नो इट एक्चुअली इज गुड राइट इट इज जेन्युइनली समथिंग दैट यू कैन फील दैट कम्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ समबडीज सोल एंड कनेक्ट्स विद यू इन एग्जैक्टली द सेम वे मगर इज नो वे इज ही ट्राइंग टू अपील टू इन नो वे इज ही ट्राइंग टू अपील टू द मेन स्ट्रीम सो बट ही आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन अप्रिशिएट दैट वर्क सो या आई डोंट
या
अंडरस्टैंड आई डोंट अग्री विद दीज एक्सक्यूजेज आई फील लाइक वेन यू आर मेकिंग सो मच दैट इज सेलिंग राइट देन यू हैव द सरप्लस to be able to create things that may not sell in those ways. I mean, at least have some desire for creativity. I don't think they do.
I think that most people who work in the industry, a lot of them, of course, they have a desire for creativity. Nobody becomes a screenwriter or a director thinking, "Main badi okay, mediocre kaam karungi," right?
When
Everyone
I say they,
wants
honestly, I
aspires
mean the
to.
channel owners, I mean, obviously.
Yeah, I mean the channel owners, of course. Have you seen Joyland?
I have.
And what were your thoughts on Joyland?
Okay. Huh.
Speaking of, being a dreamer and an idealist.
I don't know. I'm not because my thoughts on Joyland are not. It's hard to explain. When I saw Joyland, I actually liked it, but when I thought about it afterwards, I really did feel that it is one of those things that a lot of Pakistani. Again, for the lack of a better word, a lot of people get antagonized by this word. I'm really sorry, but burger. Kids, what are you doing? Like, your aim is, it's so obvious that your aim is some film festival. And when it becomes that obvious, the thing is, okay, with Joylent and with anything that, Pakistan creates sort of in an alt space, I always feel that Pakistanis just do not have the immersion in their own land and in their own people because we live in such gated mental spaces, not just gated communities, that we want to talk about the ordinary Pakistani, but we don't know the ordinary Pakistani or whatever the ordinary Pakistani
What's
is.
an ordinary
Why?
Pakistani for you?
Yeah, exactly, whatever it is. My thing is that for Joylent people, that ordinary Pakistani was somebody in Andhroon Shahr, right? Although they don't live in the Andhroon Shahr, they clearly don't know anything about the Andhroon Shahr. But it's the space they want to be in to prove themselves to be the ordinary Pakistani. They will not set their movies in spaces that they know. They will not critique their own spaces, but they will enter into this sort of like separate space that they are looking at from foreign eyes and also going to send it to foreign eyes. And all of their ecosystem is just not about the person in Pakistan. And that is my problem with ventures like Joylent and like, things like that. For me, it's like, the accents are wrong, the clothes are wrong. But even if if we say they were right, even let's say they were right, I still think, you can tell that from within the story itself that this story is not this person's story who's telling this story. And they will not tell their own stories because they're too afraid, perhaps. I don't know. Because that actually requires much greater creative courage. I personally don't care for English writing about, like, people who these people will only again view from outside eyes. And I didn't appreciate Joyland because of that fact, because I could, there were so many ways in which I could see that this is an attempt at Pakistaning, that, they think is valuable basically because, they are talking about some society that think is the actual Pakistan. But
Got
yeah, I
it.
mean, yeah.
So, I love Joyland. I thought it was
Yeah.
brilliant. I also appreciate what you're saying, and I think I know where you're coming from. For someone like me who is a professional storyteller, I judge a story on whether the story has an interior logic that it stays true to, right? One creates the world of a story, and as long as that world is seamless, I don't have a problem with it.
I would
And
say that even those aspects I didn't feel worked for me.
So again, it's all of this at the end of the day is completely
It's subjective.
subjective. And the world and the idea of Pakistaniyat is big enough to incorporate my opinion and your opinion and the opinion of, about hundreds of millions of other people. So it's perfectly okay.
Course.
But I
Yeah,
think
as long
that.
as, but art needs to, the problem, I agree with you completely, but from the storytelling perspective too, I feel art has to be authentic, right? To appeal.
मैम
If
आप
the
हर दो
city
जुमले की कोई और छेड़ बात छेड़नी है और मैं सोच रही हूँ मैं अब इस पे शुरू करूँ अच्छा मत
के बगैर तो आर्ट आर्ट नहीं है।
बोलेगा
चले
हाँ
ठीक नहीं जाती हूँ
ऑथेंटिसिटी की आपने बात अब छेड़ दी चलें बोलें आप
नहीं
बताएं पहले पहले आप
नहीं
बताएं
सही है, जो मैंने
ऑथेंटिसिटी
बात की
क्या
वो
होती
उसी
है
के हवाले से ही, पहले ही मैं कर चुकी हूँ कि ये वो मुझे इसलिए ऑथेंटिक नहीं लगता।
हाँ
तो जब वो ऑथेंटिक नहीं है, अगर आप ट्रेन स्पॉटिंग देखते हैं, अगर मतलब आप ये डेरी गर्ल्स देख रहे हैं,
या डेरी गर्ल्स इज वेरी फनी या
दैट्स लाइक क्यों है वो इतनी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि जिन्होंने भी लिखा है जो भी वो करें, पंचायत आप देखें अगर आपने इंडियन शोज वगैरह में से, क्योंकि या काफी हद तक ये जो यार ये जो किरण राव की जो फिल्म है लापता लेडीज,
आई सॉ
सो
दैट लास्ट वीक एंड एंजॉयड इट
सो माय थिंग इज दैट इंडिया में, क्योंकि आपको रूरल बैकग्राउंड से भी, छोटे इंडिया में छोटे शहर एग्जिस्ट करते हैं, टीयर टू सिटी का कॉन्सेप्ट है, टीयर थ्री सिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास दो शहर हैं, ठीक है, उनमें सारे जो हैं जो पढ़े लिखे हैं वो गेटेड कम्युनिटीज में बैठे हुए हैं, ठीक है, उन उनसे हम कैसे क्रिएटिविटी की तवक्को करें, और जो नहीं है, जो भरत इश्तियाक वगैरह टाइप के हैं, वो जो हैं वो उनकी अपनी एक जहन की गेटेडनेस है क्लियरली, तो ये नहीं, वो सिर्फ हमारे पास ये दो बबल्स हैं। और कोई जब एक ऑर्गेनिक पंपिंग शहर ही नहीं है, कोई आपस में इंगेजमेंट ही नहीं है, हर कोई जो या एक अंग्रेजी के बबल की दुनिया है, या फिर ये इस्लाम के, या कंजर्वेटिव कह लें उसको आप, इस्लाम ना भी कहें तो एक पाकिस्तान का जो स्टेट डेफिनेशन के जो पाकिस्तानियत है या जो कल्चरल की है वो है, तो मतलब देर इज नो रियल हार्ट इन दीज स्टोरीज, और ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी इन दीज स्टोरीज, बिकॉज देर इज नो रियल मीटिंग ऑफ पीपल।
I'm going to read you this prized possession of mine that I was telling you about a little while ago. It's a publication from the Pakistan Academy of Letters, which was a state-funded project to create a Pakistan identity. And this is the first issue of this publication. It's from 1992. And it's called Pakistani Literature. Aur uska blurb hai, Pakistani literature preceded the emergence of the state by many centuries. Its early development took place in a highly cosmopolitan atmosphere, which had emerged after the arrivals of the Muslims in the subcontinent. The interaction of Islamic civilization with the local traditions gave birth to a unique synthesis of historic importance. Pakistani literature is a product of this organic development. Ab isme जो पाकिस्तानी राइटिंग फीचर हुई है एज पार्ट ऑफ दिस ऑफिशियल स्टेट आइडेंटिटी क्रिएशन प्रोजेक्ट फ्रॉम द ईयर 1992 इज पंजाबी उर्दू पश्तो सिंधी बलोची एंड इंग्लिश आई हैव नोटिस दैट इंग्लिश में लिखने वालों के लिए आपके पास खासा प्यार ज्यादा प्यार नहीं है व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल बट
बैड व्हेन
इंग्लिश इज
समबडी
अ
सेज
पाकिस्तानी लैंग्वेज एज वेल
श्योर, आई मीन व्हाई नॉट। मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है विद इंग्लिश,
हम लग
और
रहा है कैन वी इंटरोगेट दैट अ लिटिल बिट
श्योर, या एब्सोल्युटली, या देखो यार,
व्हाई
मैं आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद माय फैमिली बैकग्राउंड, एंड दैट इज बेसिकली दैट माय बोथ माय पेरेंट्स आर पीएचडीज इन उर्दू, And both of them are Punjabi speaking. And like my mother is Punjabi, as in like unki to sara मतलब साथ पूछते हैं पंजाबी हैं मगर और वट एवर लाइक यू नो वहीं पे रहे हैं वो मगर माय डैड्स फैमिली इज फ्रॉम कश्मीर एंड देन केम टू अमृतसर एंड देन अपॉन पार्टीशन लाहौर एंड जंग बट एनीवे सो माय थिंग इज दैट यू नो विद माय मदर इन पर्टिकुलर यू नो शी हैड एन इमेंस कॉम्प्लेक्स अबाउट हर लैक ऑफ इंग्लिश सो यू नो सो शी really wanted to send her kids to English medium schools and you know all of that and she managed and वो सारा कुछ कर लिया जो आई गेस उनके जहन में होगा कि बच्चों को बनाना चाहिए लेकिन यू नो दैट हैज लेफ्ट अ ह्यूज आई सपोज इम्प्रेशन ऑन मी व्हेन आई एम लाइक व्हाट इज द बिग डील राइट एंड यू नो एक किस्म का एक उसका रिएक्शन है कह लें एंड सो मुझे एक तो खैर ये मुझे बजा बहुत बड़ी एक लगती है और उसके अलावा लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अंग्रेजी ठीक है जाहिर है कि अहम इस तरह से हमारे लिए है कि वो हमें जोड़ती है बहुत से ऐसे ख्यालात के साथ भी इम्पल्सिस के साथ भी जो यू नो यूनिवर्सलिस्ट हैं ग्लोबलिस्ट हैं जो कि मैं यकीन भी रखती हूँ लेकिन मैं समझती हूँ कि अंग्रेजी एक बहुत बड़ा मसला भी है हमारे यहाँ एंड आई पर्सनली थिंक दैट यू नो बिकॉज ऑफ एंगेजिंग मोस्टली इन इंग्लिश पाकिस्तानी बाय द वर्च्यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली दे आर अपरूटेड फ्रॉम देमसेल्व्स यू नो और फ्रॉम देयर लैंड इंग्लिश एड्स टू इट इन वेज दैट लाइक इट मे ऑल्सो एड टू इंडियाज आइडेंटिटी क्राइसिस बट इंडिया एटलीस्ट हैज समथिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स नॉट अपरूटेड फ्रॉम इट्स पास्ट आई मीन इट कैन एटलीस्ट हैव बोथ थिंग्स टुगेदर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हम अपनी सोयल से इंडिया वो सोयल अगर है तो उससे अपरूट हो गए हैं और हमारे पास एक तरफ रह गई है यू नो रिलीजन और एक तरफ रह गई अंग्रेजी और यू नो और वो अब उसका भी मिलाप हो गया यू नो जैसे आपने हमारा मकसूद का इंटरव्यू किया और मैंने कल वो
जी
सुना था पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आई लव हमारा मकसूद वर्क एंड सो यू नो वो जो है अब क्या है कि अब वो मिलाप हो गया अंग्रेजी और इस्लाम का भी तो अब वो जो इस वक्त जो नए बर्गर हैं वो अब इस्लामी भी हैं और वो अंग्रेज भी हैं तो
मैम, बर्गर बर्गर
कमाल
की बात होती है. आई मीन नॉट एवरी बर्गर इज
मतलब मैं
इस्लामी.
ऑब्वियसली एक जो पल्स जो देखती हूँ एक ओवरऑल जाइट गाइस की बात जो जाहिर है हर टाइप
हाँ
का इंसान है मगर यू नो व्हाट इज द होल आई अगेन नॉट एट ऑल टू डिसमिस व्हाट्स यू नो हैपनिंग यू नो बिल्कुल मैं ये नहीं मेरा मकसद लेकिन यू नो द एग्जाम्पल ऑफ पैलेस्टाइन टू मी इज फ्रेड एम्ब्लमेटिक ऑफ दैट कि वो बर्गर और इस्लाम का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आपको अपने बारे में आपकी आंखें बंद हैं यू आर ब्लाइंडेड टू एनीथिंग अराउंड यू बिकॉज एक अंग्रेजी ने आपको सारा दिन आप अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते हैं रोज में जो भी इंस्टाग्राम पे जो बुक अकाउंट्स हैं या कोई और हैं जो भी एडिटर्स हैं अंग्रेजी वाले जो भी हैं वो सारा दिन ये देख रहे हैं कि ये अंग्रेज कौन क्या लिख रहा है ठीक है आपको कुछ नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्योंकि अब आप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की दुनिया में भी जहां पर आप देख रहे हैं और जो भी कुछ कह रहे हैं तो अब आपका ग्लोबल लेफ्ट से आपका सारा जो है वो इनपुट हो रहा है अंग्रेजी के अंदर सो नाउ यू आर इमर्स्ड इन द वर्ल्ड ऑफ यू नो पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश इन द यूएस और लार्जली इन द यूएस आई वुड से एंड हुज इंटरेस्ट आर based in that country but now you are feeling that you are rebelling against some larger global structure while completely ignoring your geography and I think for me perhaps you know अंग्रेजी का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको वो पहले ही पाकिस्तान अपने वेरियस वजहों की बिना पर अपरूटेड अपनी ज्योग्राफी से और अंग्रेजी उसको मजीद अपरूट कर देती है एंड दैट आई थिंक इज प्रोबेबली माई इश्यू
I understand and respect both of those positions. I wonder if we could also, though, acknowledge that there are different strands of Pakistani English language writing. You know, you can look at Pakistani English language writing from the perspective of the outside in and either see and acknowledge and talk about only those who have been published out of the US or the UK and Europe and are reviewed and covered there. And you can also acknowledge that there is a whole indigenous strand of writing, which grew out of people, the lives of writers who do not come from privileged backgrounds where, okay, bap, dada, aunts, uncles, etc., were part of the colonial administration. And that is why they had exposure to all this stuff and they traveled a lot and they had libraries. I mean, there are writers like Faiqa Mansab, Musharraf Ali Faruqi, Usman Malik, Sara Nawid. And this is
I've
all
read the
indigenous
first two.
Pakistani English language
I've
writing,
read Musharraf.
right? और हाँ और हमारे जो इनकाउंटर्स अंग्रेजी जबान से हैं वो शायद उन चीजों से न, इतने नहीं इन्फ्लुएंस हुए जितने और लोग हैं. एंड सो
सही
टू व्हेन यू सॉर्ट ऑफ टू डिसमिस ऑल पाकिस्तानी राइटिंग एज बीइंग एंड आई नो दैट यू डोंट इंटेंड टू लेट मी से दैट आई
No.
अप्रिशिएट दैट आई
I
थिंक दैट
really
इट
appreciate this
हाँ
feedback in a positive sort of environment, because वो ट्विटर पे ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ गालियां शुरू हो जाती है. यू कांट
हाँ
रियली एक्चुअली
नहीं
हैव अ
गाली
कॉन्वर्सेशन
गालियों की कोई
सर्विस.
जरूरत नहीं है. आई मीन
या आई
गाली
मीन
इज
एज अ लाइक
द
बैड ब्लड वाला हो जाता है. सीन्स सो इट्स
हाँ
रियली गुड फॉर मी टू बी एबल टू लिसन टू समथिंग लाइक दिस, लाइक इन दिस एनवायरनमेंट. एनीवे यस प्लीज गो अहेड.
Yeah, and it's a really rich and fertile time for writers like that as well. Or सबसे मजे की बात उसमें, and this goes back to your work actually, which is that the similarities between India and Pakistan and the shared cultural heritage. So my work, for example, has only been published in India, by the way. लेकिन मेरे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिस प्लेटफॉर्म पे ये पॉडकास्ट होस्ट होती है, लकीर, आप उस पे देख लें.
बिल्कुल सही.
So I think it's just important for me that the nuance and the depth of our living culture not be sidelined
तो
because
अब मेरा
of
आपसे एक
हाँ
सवाल है. तो वो ये है कि बिल्कुल आई 100% एग्री. ना ही मैं समझती हूँ कि जो लिख रहा है, मतलब पर्सनली उसको डिस्करेज करने का कोई मकसद है. और मैं बहुत सब पढ़ती भी हूँ अंग्रेजी का, पाकिस्तान से भी जो आता है, जो मुझे बहुत पसंद भी है, राइट? एंड सो आई आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू. इंग्लिश इज इंडीड ऑल्सो अ पाकिस्तानी लैंग्वेज, राइट? दैट आई एम नॉट डिनाइंग. बट आई ऑल्सो फील दैट क्योंकि एक ओवरवेलमिंगली जो एजुकेटेड हमारा तबका है अब, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों में एजुकेट होता है, उसके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और कोई जबान बची भी नहीं है. और हायर लेवल पे अगर एक्सप्रेस करना है तो बिल्कुल ही नहीं बची. तो उसका मुझे ये बहरहाल ये लगता है क्योंकि देर इज डेफिनेटली आई फील प्राइवेट इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड पाकिस्तान एंड द रेस्ट. तो मुझे ये लगता है कि नेवर द ट्वेन शैल मीट वाला काफी हद तक ये ना एक तरफ पाकिस्तानी ड्रामा है, और दूसरी तरफ एक वो बच्चा है जो कि उससे शायद आवाजार भी हो और फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? और मुझे मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि मैं अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल, मैं इस स्पेस में एग्जिस्ट भी करती हूँ. लाइक आई लाइक यू नो आप जो है आप आपके जो एक कहने फ्रेटर्निटी है, मेरी है, वो मेरी एक्चुअली वही लोग. आई मीन आपने जिन लोगों के नाम लिए, फाइका मनसब हो गई, मुशरफ अली फारूकी हो गए वगैरह, दीज आर पीपल आई नो, राइट? अब मैं किसी पाकिस्तानी राइटर को पढ़ती हूँ, हाफ द टाइम आई नो देम पर्सनली, राइट? सो दीज आर द पीपल आई मीन बिकॉज आई पर्सनली नो. आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ सॉर्ट ऑफ डिसमिसिंग एक तो देयर वर्क एट अ पर्सनल लेवल, इवन बट इवन एट अ जनरल लेवल. बट आई डू डू फील अनफॉर्चुनेटली कि जितना ज्यादा हम हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो कट ऑफ होता जाता है, और अंग्रेजी मेरे लिए उसके उसका एक सिंबल है.
सही. तो इस पे एक और सवाल उठता है. इज इट पॉसिबल दैट द रीजन सो मेनी पीपल आर नाउ चूजिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्रिएटिवली एंड पॉलिटिकली इन इंग्लिश इज दैट इट्स सिंपली सेफर टू डू सो? बिकॉज अगर आप उर्दू में करें या सराइकी में करें या पश्तो में करें, आपको कोई उठा के मार देगा.
जी हाँ,
और
नहीं हाँ,
बिकॉज
बिल्कुल
तो ये भी बात है. और
जी
दूसरी
हाँ
बात ये जो दिस द फॉर्मेशन ऑफ दिस एको चेम्बर
जी
It's
हाँ
not the first time this has happened in Pakistan. I mean, actually, the whole idea of Pakistani adab has come out of an echo
राइट
chamber, an elitist echo chamber, which was the
बिल्कुल
Ashrafia and
बिल्कुल
the
सही.
elite Urdu speaking population. तो
एग्जैक्टली
मुझे फिर ये भी अजीब लगता है कि जब वो लोग कर रहे थे तो ठीक था, अब
नहीं,
हम
हम तो
इंग्लिश
उसको
में
भी
कर रहे हैं
कहते हैं कि
तो
ठीक नहीं
मसला
है.
है. आई मीन सो आई मीन
वही
मेरी
मैं कह रहा,
जो
हम तो उसको भी कहते हैं ठीक नहीं है. और उर्दू इन इट सेल्फ ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि इस्तेमाल हुई इन चीजों के लिए, लेकिन ऐसा भी है कि नहीं भी है. उर्दू का भी एक बहुत डाइवर्स है आउटपुट.
Yes,
तो
and Urdu is in a very exciting place for now. I mean, I think one another thing that you and I share is an interest in rappers out of Karachi.
हाँ
Right?
बिल्कुल
और जैसे तला अंजुम का काम आप देखें,
जी
और
जी जी
अभी
जी
आई वाज वाचिंग गानी गाने की कहानी, एंड देयर वाज अनदर रैपर जिसका गाना मैंने पहले नहीं सुना था, अलीम समथिंग.
जी जी अली मार के
यस, सो दे आल्सो हैव दीज बिट्स ऑफ इंग्लिश इन देयर, राइट?
या एब्सोल्युटली हाँ देखिए मिंग्लिश तो अब हमारी जबान है राइट
या
ये तो खैर अनडिनाइबल है कि मिंग्लिश ही अब बोलती है देयर इज नो सच थिंग एज लाइक एनीबडी हु इज एबल टू स्पीक एनी व्हाटएवर इन क्वोट्स प्योर लैंग्वेज तो वो तो खैर एब्सोल्युटली मैं तो बोल ही नहीं सकती मैं तो एक जुमला नहीं बोल सकती किसी एक जबान में मैं पूरी तरह ना अगर मैं आपसे जब आम गुफ्तगू कर रही हूँ तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है मैं अंग्रेजी भी मेरे लिए एक्चुअली बोलना काफी दुश्वार रहती है क्योंकि मुझे वहां पर भी जो है वो कांस्टेंट जरूरत महसूस होती है कि मैं उर्दू या पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करूँ इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ कि यार मेरा जो खामन है वो तीनों जबानें समझता है जो मैं समझती हूँ क्योंकि मेरे लिए अपने आप को जेन्युइन एक्सप्रेशन वही है उन जबानों तीनों जबानों का मिक्स तो वो तो एक एक अनडिनाइबल फैक्ट है लेकिन वो मैं समझती हूँ कि हाँ फिर वो जो जबान है जो कि इस वक्त बन रही है उर्दू है ही उर्दू का तो हेरिटेज ही ये है कि वो है ही एक मिक्स जबान और वो उन्हीं जबानों के से वो जो फीडर जबानें हैं उसकी उसको लेकर वो आगे चलती है तो अभी भी वही हो रहा है अंग्रेजी जो है वो फीडर जबान है जो पहले पर्शियन थी तो वो तो ठीक है लेकिन फिर वो जो इस वक्त आम इंसान की जबान है ये बड़ा एक मेरे लिए बहुत बड़ा मैं सवाल है कि वो जो है वो कैसे कैप्चर की जाए और मुझे ये लगता है कि वो विजुअल मीडियम में कैप्चर करना फिर भी मुमकिन है इस वक्त प्रिंट मीडियम में कैप्चर करना मुश्किल है मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक हमारा जब तक ऐसा नहीं होगा कि ऑगमेंटेशन वाइडर एक ऐसी राइटिंग के साथ नहीं होगी जो कि लोकल हो तो ये हमारे ऊपर ज्यादा हैवी वे करना शुरू हो जाता है
There are two ways again of looking at this situation as well, that you can put the onus of the situation on the person, the creative person, the writer, the artist, the singer, or you can put it on the entities and the establishment that throttles creativity and has throttled it mercilessly in pursuit of a bigger agenda since the moment Pakistan was created.
Sahi. Yeah, that's also true. Absolutely, that's true. But again, in that regard as well, I feel like the Pakistani establishment has, or the creation of Pakistan, I wouldn't say the Pakistan establishment, I think the very creation of Pakistan has orphaned us from everything, literally. I would say that फिर उसके बाद इट्स द होल ग्लोबल थिंग इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट बिकॉज हम अपनी जमीन से ऑर्फन हो गए तो अब हमारे पास और रह ही क्या गया हमारे पास फिर बाहर ही देखना है हमने सो वी आर
लेकिन
लाइक
अपनी जमीन, हमारी जमीन है कहाँ? आई मीन, क्या क्या जमीन?
राइट
कैन अ पर्सन रियली एवर
जमीन
इवन
जहां
बिलोंग
पे
टू
ही आप खड़े
एनीथिंग?
यार यार आपका शहर तो हो सकती है ना आपकी जमीन आपका आप आपका इर्द गिर्द तो हो सकता है ना इमीडिएट इर्द गिर्द ये कंट्री शंट्री तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही फिजूल एक मतलब बहुत ही बकवास और आर्बिट्री आइडिया है खासतौर पे जहाँ पे आपने इतने डिस्पेरेट लोगों का आप एक दैट इज वाई अगेन एटलीस्ट द आइडिया ऑफ समथिंग लाइक इंडिया अक्लमंदों ने बनाया हुए वो ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ठीक है तो कम अज कम आप इंडियन होते हो ये कह सकते हैं ठीक है मैं इंडियन हूँ लेकिन असल में तो मैं और आप इंडियंस को मिलते हैं ऑब्वियसली इंडिया से ज्यादा डाइवर्स तो दुनिया में शायद कोई मुल्क नहीं है तो लेकिन वो फिर भी एक इंडियन आइडेंटिटी में भी अपने आप को कुछ हद तक समो सकते हैं चाहे नॉर्थ साउथ की कितनी भी लड़ाई हो लेकिन अपनी आइडेंटिटीज भी मेंटेन कर सकते हैं हमारी तो जो आइडेंटिटी की फाउंडेशन है वो अपनी आइडेंटिटी को निगेट करने में है ना तो या जो भी अपनी अगर एथनिक आइडेंटिटी है या अगर वो वैरायटी ऑफ आइडेंटिटी भी है तो हाँ जमीन बहरहाल यार देखो जमीन बहरहाल होती है एक चीज इसलिए इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो ओवरसीज वाली जो आपने बात की थी पहले बीइंग डिवोर्स्ड फ्रॉम योर ज्योग्राफी इज अ वायलेंट थिंग राइट एंड दैट इज वाई पार्टीशन वॉज ऑल्सो बियॉन्ड द एक्चुअल वायलेंस उसका जो बाकी फॉल आउट है वो कितना वायलेंट है बिकॉज यू आर बींग डिवोर्स फ्रॉम वेयर यू फिजिकली बिलोंग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अंडरस्टूड तो इसलिए हाँ अपनी जगह अपनी जमीन एक चीज है फॉर मी लाइक देन आई एटलीस्ट डू रूट माई सेल्फ इन लाहौर हिस्ट्री फॉर इंस्टेंस लाइक आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑन लाहौर लेटली And I feel that, you know, that helps me feel grounded in some way. इन ओके मतलब प्री पार्टीशन लाहौर के बारे में पढ़ने से एक्चुअली खौफनाक भी बहुत एक उसका असर है मेरे ऊपर, क्योंकि आई एम लाइक बहुत यू नो व्हेन यू रीड अबाउट दिस वीडियो दैट यू मेंशन द वन अबाउट लाइक इंडियंस फ्रॉम पाकिस्तान दैट आई जस्ट यू नो द रील आई मेड इट स्टेम्स फ्रॉम मी बींग डीपली इमर्स दिस डेज इन यू नो दिस काइंड ऑफ प्री पार्टीशन हिस्ट्री एंड द फैक्ट दैट यू नो अच्छा यार मेरे शहर में ये था लाहौर ये एंड ट्राई टू यू नो सिर्फ इमेजिन इट एंड यू नो एंड गेट योर माइंड ब्लोन बाय बाय ऑल या आई डोंट नो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ और आप
No,
क्या कह रहे
I hear
हैं
you. I hear you. My
या
father was 17 or 18 at the time that partition happened, right? So my father was
हम्म
Indian. My mother was born before partition in Baramulla, Kashmir, and fled as a refugee. And eventually their family
Oh
made it
wow.
down.
Is that when the Baramulla killings happened in 1940?
Yes. Yep.
Oh
And
wow. Okay.
they were Christian, and
Yes, of
so they
course.
were
Yeah.
stopped and they were about to be slaughtered. But because
Oh.
my Nana actually converted from Islam to Christianity, so he could go to a missionary school, which obviously did not go down well with his extended family. उनको कलमा आता था और उन्होंने बहुत जल्दी से सब बाकियों को सिखा दिया. They pretended to be Muslim to survive.
हाँ, अब आपने
तो
ये जो बात की है, आई एम सॉरी, आई एम
और
नॉट फाइन वर्ड
मेरे
बट
जो वालिद साहब थे उनका जो घर है दे
ओके
हैड हिंदू नेबर्स एंड फॉर द
राइट
फर्स्ट ईयर एवरी वीक दे वुड कम बैक
ओ वाह राइट
एंड दे थॉट कि नहीं अब ठीक हो जाएंगी चीजें.
या
तो यू नो द सॉर्ट ऑफ स्टोरीज दैट
ये देखिए ना जो आप बता रही हैं आप कितनी कमाल ये इंटरेस्टिंग मैं एंड देयर व्हाट यू आर सेइंग कम्स इन कि भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वाला फैक्टर एंड मेरी थिंग कम्स इन कि अंग्रेजी में करना अब आपकी कितनी कमाल कितनी इंटरेस्टिंग बात है अब यही मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में एक आम फहम जबान में ये बातें हमारे लिए कहना भी मुश्किल है यू नो इनके इनको सामने आना भी मुश्किल है देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग देयर थिंग और कोई जो अंग्रेजी में कर रहा है और यू नो अपने तरीकों से करे जरूर किसी की ड्यूटी तो नहीं है ना कि पाकिस्तान को बेहतर करने की या उस चीज को यू नो वो हर एक अपना मकसद है एंड अब उससे क्या पाकिस्तान बदल जाएगा या हमारी इर्द गिर्द लोग दुनिया बदल नहीं उससे एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा एक बार
Yeah, it absolutely doesn't matter. I mean, one should not go into something thinking कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा. That's not,
बिल्कुल
and at the end of the day, there is only really one way in which people are different. There are only two states of being: either you're alive or you're dead. Everything else is an
सही
extra.
बात
That's my approach. But मेरे ख्याल में हमने एक तो बहुत सारा टाइम इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग पे वेस्ट कर लिया, which is the problem with English language writing. और दूसरा,
ऑफ
पाकिस्तान का मसला कभी हल नहीं होगा, because that's just the
कोर्स
nature of the beast. Can you talk to me about, a little bit about saris? Because I have noticed recently that there has been a reclamation. So this happens, I think every generation discovers suddenly that the previous generation was human and they feel compelled to reinvent the wheel.
Absolutely.
And that's been happening with the sari, and you've stepped in. And what that there are two things I really admire about you. One is your willingness to step in when you say when you see that something is being lost. And say, no, excuse me, ye bhi hua tha. And I think two instances where you did that was with the sari and with Zia ul Haq.
ज़ियाउल हक तो खैर मेरा पेट प्रोजेक्ट है एज यू मे हैव रियलाइज्ड बाय नाउ बिकॉज आई फील के वो बहुत इजी सा नैरेटिव बना दिया गया है थ्रू यू नो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अगेन बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जिन लोगों ने वो बनाया उन्होंने भुट्टो का दौर भी देखा था और फिर उन्होंने ज़िया का देखा एंड देयर लाइक यू नो सबसे वेरिएंटली अपोज्ड टू एंड वेरी वेरी राइटली सो जो कुछ उन्होंने देखा मैं फुली आई अंडरस्टैंड दैट बट आई ऑल्सो फील दैट अ लॉट ऑफ देम सॉर्ट ऑफ डिसएंगेज्ड From popular culture, because they were like in their maybe you know mid to late 20s or something at that point in time, and you know they created a narrative for future generations that was unfortunately fairly lopsided, because baharal you know unhone almost you know false. So I really really want to talk about Zia because of the fact, not because I have any interest in absolving Zia. But because I feel that by putting the blame on Zia, you are taking away from the fact that this is पाकिस्तान, इट्स नॉट ज़िया। सो आप बहुत कन्वीनियंटली जो है वो पाक नेशनलिस्ट भी बन गए हैं अब इन योर ओल्ड एज, आप उस किस्म की सारी बातें करते हैं व्हाटएवर, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डू इट, बिकॉज़ यू लिव इन पाकिस्तान, आपका वहां पे स्टेक्स हैं, आप चाहते हैं कि वो बेहतर हो, तो ऑब्वियसली आप एंटी पाकिस्तान या ये कि उसकी फाउंडेशन को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे उसके बाद? सो यू नो आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, विच इज दैट यू नो यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ। एंड वो प्रॉब्लम ये है कि जिया ने आके पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बनाया, पाकिस्तान पाकिस्तान ही था पहले दिन से। सो देयर फॉर यू नो देयर इज दैट, एंड देयर इज ऑल्सो द थिंग दैट यू नो इट इवेंचुअली बिकेम व्हाट इट बिकेम बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट फोर्सेज ऑफ यू नो अगेन बैक टू हमारा मकसूद ग्लोबल फोर्सेज वगैरह वगैरह, इट्स नॉट सिंपली यू नो जस्ट दिस वन थिंग अबाउट द सारी अगेन, बिकॉज मुझे ये होती है तकलीफ के यू नो यू कैन हैव अ सर्टेन नैरेटिव व्हाटएवर यू कैन हैव इट बट बेस्ड ऑन ट्रूथ नॉट फॉल्सहुड। सो साड़ी वाला भी वही बात है कि बहुत सा ये एक्चुअल पब्लिश चीजें मैंने देखी जो कि इनकी कोई फैक्ट चेकिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी भाई, नहीं थी साड़ी बैंड। इवन यू नो दिस आइडिया वॉज प्रेवलेंट आई फील, ऑल्दो दैट वीडियो डज नॉट हैव लाइक दैट मेनी व्यूज, तो मैं ये नहीं कह रही कि उस वीडियो ने कोई चेंज कर दिया कोई नैरेटिव, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोगों के जहन में शायद कुछ मैंने तब्दीली देखी है। वरना पीपल यूज टू से थिंग्स लाइक यू नो जो दुपट्टा पॉलिसी थी ड्रामों की वो जिया के दौर में थी, वो नहीं थी जिया के दौर में, वो एक्चुअली नवाज शरीफ के पहले दौर में थी। तो यू नो आप जब हर चीज फिर वो एक यू नो एक ऐसा वो बीस्ट बन जाता है कि हर कोई जो है वो दिस पीपल स्टॉप थिंकिंग एंड देन दे जस्ट लाइक यू नो वो नैरेटिव के साथ बह रहे हैं बस। तो मेरा ये पर्सनल ख्याल है कि यू नो थिंग्स चेंज फॉर द वर्स इफ सो इंडीड, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि कोई लीनियर वर्स और बेटर है। अभी इस वक्त भी जो पाकिस्तान है वो कितने तरीकों से यू नो इट्स वे मोर प्रोग्रेसिव लेट्स से देन यू नो व्हाट इट वाज व्हेन आई वाज यंगर।
So there's a writer I admire greatly. She's an English writer, Rachel Cusk, and in an interview she said the problems of writing are the problems of living. And I've increasingly come to see the wisdom behind that. And I wonder if our the shortcomings of the art that we produce are informed by our life experiences. तो ये जो पीटीवी वाले सोर्स ने मुझे जो चीजें कही yesterday, one of the things was that in terms of exposition, that you have to understand that our audience is so used to being told through dictatorship or authoritarianism. We are so used to being told things that if someone is not telling us something, we think it's crap. So
यार मैं तो
that's now
बहुत
become our
डिसएग्री
default
करती हूँ,
storytelling.
लेकिन ये मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। इतना हमारे लोगों ने, हमारे क्रिएटिव्स ने इतनी इजीली हर चीज पाम ऑफ कर दी है टू डिक्टेटरशिप्स, टू एस्टेब्लिशमेंट, व्हाटएवर। उन्हीं डिक्टेटरशिप्स के अंडर लोग जो हैं वो इंतहाई सटल चीजें करके जो है उन्हीं डिक्टेटरशिप्स को का मजाक उड़ा रहे थे। आप क्या बात करें यार, द बेस्ट वर्क, हालांकि उसका बाद में इतना बुरा काम है, लेकिन अनवर मकसूद का इतना इतना अच्छा काम भी है अंडर द डिक्टेटरशिप, जो कि इतना सटल है, क्योंकि आप सटल हुए बगैर रह ही नहीं सकते थे। डिक्टेटरशिप ईरान नहीं है, डिक्टेटरशिप के अंडर ऑफ अ सॉर्ट, तो आप जो हैं वो उन्होंने उसी वजह से अपनी सटल एक्सप्रेशन डेवलप किए क्योंकि आप डायरेक्टली कह ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा है ना इन दोज वेज। तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती ये अपनी जो है वो लैक को किसी और के ऊपर डाल देना। यू नो मैं पर्सनली अगर मैं कुछ नहीं लिख सकती, मैं एक चीज लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैंने नोट किया कि मेरे में एबिलिटी नहीं है, तो अब मैं ये कहूँ कि मेरे में एबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पाकिस्तान में पली बड़ी थी, फलाना फलाना, हो सकता है इसकी वजह ये हो, लेकिन यू नो यू कांट ब्लेम इट ऑन अदर्स ऑल द टाइम, यू जस्ट कांट। लाइक इफ यू want to do something, if you have the capacity to do something, you'll do it and you will be able to do it. ये हमारे यहाँ बहुत easy route लोगों ने, हमारे creatives ने खास तौर पे find कर लिया कि वो यो फारिस शफी बना सकता है वो गाने जो वो बना रहा है, he's amazing because although मुझे ये नहीं कि मैं उस type की हूँ, मैंने कई चीजें मुझे उसकी बुरी भी लगती है whatever, लेकिन मैं कहती हूँ कमाल है भाई, क्या टैलेंट,
आई
पता
थिंक
लगता है ना कि टैलेंट है, राइट?
या
तो आप ये ना कहें कि भाई तो फारिस अभी भी उसी डिक्टेटरशिप के अंडर से निकला है ना, या उन्हीं चीजों के अंडर से निकला है, तो बल्कि उन्हीं को क्रिटिक कर रहा है, क्योंकि बल्कि आपके पास तो फर्टाइल ग्राउंड है कि आप कर सकते हैं। तो ये बातें मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। एक सेकंड के लिए मैं तैयार नहीं हूँ ये मानने के लिए कि आप कोई स्पेशल स्टूपिड हैं या कुछ ऐसा है, ये नहीं।
स्पेशल स्टूपिड
आप
या स्वाद, व्हेन यू राइटिंग अ बुक इन इंग्लिश?
एक्चुअली इंटरेस्टिंगली क्वाइट सम इयर्स अगो नाउ, थिंक तो 4 साल हो गए हैं, आई एक्चुअली गॉट अ बुक डील बिकॉज आई वॉन्टेड वन। आई पिच्ड इट टू राइट अ बुक इन इंग्लिश टू राइट अबाउट सिंगल वुमेन इन पाकिस्तान, नॉन फिक्शन। उसके बाद यू नो इमीजिएटली आफ्टर दैट आई मूव टू द US, और फिर वही जो मेरे हैं कि मैं अब बहुत फिर अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देती हूँ कि भी एम आई द राइट पर्सन फॉर दिस, व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाटएवर एवर। एंड तो मुझे बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। एक तो मुझे हो गया मैं अंग्रेजी में लिखना ही क्यों चाहती हूँ जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ अंग्रेजी के हवाले से। तो एक तो मुझे ये हो गया, दूसरा मुझे ये हुआ कि अब तो मैं हुई नहीं डिवोर्स्ड, तो मैं हाउ कैन आई स्पीक फॉर यू नो सिंगल वेमेन। Although I wasn't speaking for them to begin with, that was not the idea of the book. But even then, I felt के you know मैं एक और स्पेस में मूव कर गई हूँ, और मैं अब जो हूँ ऑथेंटिक नहीं है मेरा जो ये सब कुछ है। तो जहाँ पे मुझे अपनी ऑथेंटिसिटी अपनी भी नहीं लगने लगती, मैं वहाँ पे जो ना मुझसे होता नहीं फिर। तो मैंने नहीं किया। तो या सो बुक का तो या ये है आंसर के आई थिंक के अल्टीमेटली मैंने जो रियलाइज किया है कि मैं किताब, अगर ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्मेट की बात है, तो शायद मैं किताब नहीं लिखना चाहती अल्टीमेटली मैं। लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ, मैं एक नहीं एक से ज्यादा मैं मतलब मैं विजुअल मीडियम में मैगजीन में हैं चीजें जो मैं करना चाहती हूँ। एक सीरीज बनाना चाहती हूँ, मैं दो तीन फिल्में बनाना चाहती हूँ मेरे जहन में जो है आइडियाज।
I think you should
लेकिन
do it and it will be fantastic. So I am going to let you go now. You've given me so
थैंक
much to
यू सो
think about,
मच,
and this was
नो
such a pleasure.
सेम
And
सेम,
thank you so much.
थैंक
Bye.
यू ना, बाय।